आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। भारत ने मालदीव के लिए 400 मिलियन डॉलर की मदद और 3000 करोड़ रुपए पर मुश्तमिल बाहमी करेंसी की अदला बदली फराहम की है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुस्तकबिल के खतरा से निमटने के लिए मुल्क में नई और इख्तराई तकनीकी तरक्की पर जोर दिया है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में कल असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। मेडिसिन में माइक्रो आरएनए की दरियाफ्त के लिए साइंसदान विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुविकुन को नोबेल इनाम दिया गया है। भारतीय जिमनास्ट दीपा कर्माकर ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है। अब खबरें तफसील से। भारत ने मालदीव के लिए 400 मिलियन डॉलर की मदद और 3000 करोड़ रुपए पर मुश्तमिल बाहमी करेंसी की अदला बदली फराहम की है। ये माली इमदाद मालदीव को दरपेश माली मुश्किलात से निमटने में मददगार साबित होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मालदीव के सदर डॉक्टर मोहम्मद मुइजू के दरमियान आज नई दिल्ली में वक्त की सतह की बातचीत के दौरान इस जिम्न में फैसला लिया गया। इसके अलावा करेंसी की अदला बदली मुआहदे के तहत दोनों ममालिक ने मुफाहमत के दो इकरारनामों पर दस्तखत किए, जिसमें बदउनवानी की रोकथाम और इसका मुकाबला करने के लिए बाहमी तआवुन का मुआहदा शामिल है। दोनों ममालिक के दरमियान मालदीव के अदालती अफसरान की सलाहियत साजी के प्रोग्राम और खेलों और नौजवानों के उमूर के शोबे में तआवुन के हवाले से भी मुफाहमत के दो इकरारनामों की भी तजदीद की गई। डॉक्टर मुइजू के साथ मुजाकरात के बाद एक प्रेस बयान में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और मालदीव ने जामे इक्तसादी और बहरी सिक्योरिटी शराकतदारी के विजन को अपनाया है, ताकि दोनों ममालिक के दरमियान अपने तआवुन को स्ट्रेटेजिक सतह तक वसत दी जा सके। जनाब मोदी ने कहा कि तरक्याती शराकतदारी हमारे ताल्लुकात का एक अहम सुतून है और भारत ने हमेशा मालदीव के अवाम की तरजीहात को अव्वलियत दी है। वजीर आजम ने कहा कि मालदीव में रूपे कार्ड का आगाज किया जा चुका है और आइंदा वक्त में भारत और मालदीव को यूपीआई के साथ जोड़ने का काम किया जाएगा।
आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर चर्चा शुरू करने का निर्णय लिया। लोकल करेंसी में ट्रेड सेटलमेंट पर भी काम किया जाएगा। कुछ दिन पहले मालदीव में रूपे कार्ड लॉन्च किया गया है। आने वाले समय में भारत और मालदीव को यूपीआई से भी जोड़ने के लिए काम किया जाएगा।
मालदीव के सदर डॉक्टर मोहम्मद मुइजू ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने और वजीर आजम मोदी ने तरक्की के एक साथ कामयाब सफर का जायजा लेते हुए गहरा तबादला ख्याल किया और दोनों मुल्कों के दरमियान मुस्तकबिल के तआवुन की राह तश्कील दी है। डॉक्टर मुइजू ने कहा कि वो मालदीव को मदद फराहम करने के भारतीय हुकूमत के फैसले के लिए निहायत मशकूर हैं।
आई एम थैंकफुल फॉर द इंडियन गवर्नमेंट्स डिसीजन टू प्रोवाइड सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ 30 बिलियन इंडियन रुपीस इन एडिशन टू 400 मिलियन यूएस डॉलर्स बायलेटरल करेंसी स्वैप एग्रीमेंट व्हिच विल बी इंस्ट्रूमेंटल इन एड्रेसिंग द फॉरेन एक्सचेंज इश्यूज वी आर फेसिंग राइट नाउ।
वजीर आजम मोदी ने डॉक्टर मुइजू की मौजूदगी में मालदीप में हानी माधु बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे के रनवे का भी वर्चुअल वसीले से इफ्तिताह किया और एक्जिम बैंक्स बायर्स क्रेडिट सहूलियात के तहत उन्हें 700 से ज्यादा सोशल हाउसिंग यूनिट्स भी सौंपे। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने आज मालदीव के सदर डॉक्टर मोहम्मद मुइजू से मुलाकात की। अपनी मीटिंग के दौरान दोनों रहनुमाओं ने इस बात से इत्तेफाक किया कि आज अपनाया गया विजन दस्तावेज दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी तआवुन को गहरा करने के लिए एक फ्रेमवर्क के तौर पर काम करेगा। इससे जामे शराकतदारी में भी तब्दीली आएगी, जो मुस्तकबिल के पर मरकूज होगी और दोनों मुल्कों के लिए सूदमंद होगी। बीजेपी के सदर और मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने बीजेपी को जानिए मुहिम के हिस्से के तौर पर आज नई दिल्ली में मालदीव के सदर डॉक्टर मुइजू से मुलाकात की। इस मीटिंग के दौरान दोनों रहनुमाओं ने पिछली दहाई के दौरान भारत और मालदीव के दोतरफा रिश्तों में हुई बाजे पेशरफ्त की सताइश की। दोनों रहनुमाओं ने मालदीव में रूपे कार्ड लेन देन को मुतारिफ कराने और जामे इक्तसादी व बहरी सिक्योरिटी विजन डॉक्यूमेंट को जारी करने का खैर मकदम किया। दोनों लीडरों ने सेहत के शोबे में बाहमी इश्तराक व तआवुन बढ़ाने के तौर तरीकों के बारे में भी तबादला ख्याल किया। مالدیپ کی خاتون اول ساجدہ محمد نے بنیادی سطح پر فوڈ سیفٹی کے لیے بھارت کی ستائش کی ہے. بھارت کی فوڈ سیفٹی اور معیار سے متعلق اتھارٹی ایف ایس ایس اے آئی کے نئی دلی میں واقع صدر دفتر کے اپنے دورے کے دوران مالدیپ کی خاتون اول نے ایف ایس ایس اے آئی کے قائم کردہ لیبوریٹری ایکو سسٹم سے آگاہی حاصل کی. یہ انتظام ملک میں فوڈ سیفٹی کے اعلی ترین معیارات کو یقینی بنانے کے لیے کیے گئے ہیں. خوراک کو ڈبہ بند کرنے اور صنعتوں کے وزیر چراغ پاسوان نے کہا ہے کہ وزارت کی طرف سے آئندہ دنوں میں خوراک کی جانچ سے متعلق 100 لیبز قائم کی جائیں گی تاکہ غذائی اشیاء کی کوالٹی کو یقینی بنایا جا سکے. آج نئی دلی میں فکی کی جانب سے منعقدہ مسمرائز کی 13ویں ایڈیشن سے خطاب کرتے ہوئے جناب پاسوان نے اس بات کو اجاگر کیا کہ کچرے کو کم سے کم کرنے کے لیے شعاریزی کے 50 یونٹ قائم کیے جائیں گے جبکہ خوراک کو ڈبہ بند کرنے کے دوران ویلیو ایڈیشن کو یقینی بنایا جائے گا. جناب پاسوان نے غذائی صنعت کے متعلقہ فریقوں پر اس بات کے لیے بھی زور دیا کہ وہ بھارت کو ایک عالمی غذائی مرکز بنانے میں مدد کریں. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج مستقبل کے خطرات سے نمٹنے کے لیے ملک میں نئی اور اختراعی تکنیکی ترقی پر زور دیا. آج نئی دلی میں ڈیف کنیکٹ 4.0 کا افتتاح کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت ایک مضبوط اور خود کفیل دفاعی شعبے کے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے سرکاری اور نجی دونوں شعبوں کو مدد فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے. اس اجلاس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ یہ دفاعی ایکو نظام کے مختلف شراکت داروں کو ایک ساتھ لانے کے لیے قابل قدر پلیٹ فارم ہے. اس سے دفاع کے شعبے میں بھارت کو مستحکم کرنے اور خود کفیل بنانے میں مدد فراہم ہوگی. نجی کمپنیوں کی شراکت داری کے بارے میں بات کرتے ہوئے وزیر موصوف نے تقلیدی عمل سے اختراعی ٹیکنالوجی کی طرف بڑھنے اور مسلح افواج کی ضروریات کو پورا کرنے کے غرض سے آگے بڑھنے کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کی حوصلہ افزائی کی. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ بائیں بازو سے متاثرہ تمام ریاستیں وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں تاکہ مارچ 2026 تک ماؤ نوازوں کا پوری طرح خاتمہ کیا جا سکے. جناب شاہ نے کہا کہ نکسلزم کی لانت کو ایک بار میں پوری طرح سے خاتمے کے لیے آخر تک کوشش کرنا ضروری ہے. جناب شاہ نے آج نئی دلی میں بائیں بازو کی انتہا پسندی سے متاثرہ ریاستوں کے لیے جائزہ میٹنگ کی صدارت کی. اپنے خطاب میں انہوں نے سبھی متاثرہ ریاستوں کے وزراء اعلی سے کہا کہ وہ مہینے میں کم از کم ایک مرتبہ ماؤ نواز مخالف کارروائیوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا کریں. جموں کشمیر اور ہریانہ میں کل اسمبلی انتخابات کے ووٹوں کی گنتی کے لیے سبھی تیاریاں کر لی گئی ہیں. ووٹوں کی گنتی صبح 8 بجے شروع ہوگی اور امکان ہے کہ تقریباً دوپہر تک نتائج آنا شروع ہو جائیں گے. سب سے پہلے ڈاک سے بھیجے گئے ووٹوں کی گنتی کی جائے گی. ووٹوں کی گنتی کے عمل کو بلا رکاوٹ بنانے کے لیے انتخابی کمیشن نے خاطر خواہ بندوبست کیا ہے. کمیشن نے اپنی ویب سائٹ www.eci.gov.in کے ذریعے رجحانات اور نتائج کو عام کرنے کے لیے مستحکم خامیوں سے پاک اور محفوظ بنیادی ڈھانچہ قائم کیا ہے. ووٹوں کی گنتی کے مراکز پر سیکیورٹی کا 3 سطحی بندوبست کیا گیا ہے. جموں کشمیر میں نتائج 873 امیدواروں کی سیاسی قسمت کا فیصلہ کریں گے. مرکز کے زیر انتظام علاقے میں ووٹوں کی گنتی کے 20 مراکز قائم کیے گئے ہیں. کشمیر میں سری نگر، بڈگام، گاندربل، بانڈی پورہ، بارہ مولہ، کپواڑہ، شوپیاں، کلگام، پلوامہ اور اننت ناگ میں ووٹوں کی گنتی کے 10 مراکز قائم کیے گئے ہیں. جموں کشمیر میں پچھلے مہینے کی 18 اور 25 تاریخ کو اور اس مہینے کی پہلی تاریخ کو 3 مرحلوں میں 90 اسمبلی حلقوں کے لیے پولنگ ہوئی تھی. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. سال 2024 کے لیے فزیولوجی یا میڈیسن کے لیے نوبل انعام سائنسداں وکٹر ایمبروس اور گیری رویکن کو مائکرو آر این اے کی دریافت اور ٹرانسکرپشن کے بعد کے جین ریگولیشن میں اس کے کردار کے لیے دیا گیا ہے. مائکرو آر این اے کے ایک بنیادی اصول ہے جو کہ جین کی سرگرمی کو منظم کرتا ہے. اس فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے سویڈن کے اسٹاک ہوم میں واقع تحقیق پر مبنی میڈیکل یونیورسٹی کارولنسکا انسٹیٹیوٹ کے نوبل اسمبلی نے کہا ہے کہ ان دونوں سائنسدانوں کی دریافت یہ سمجھنے کے لیے بنیادی طور پر اہم ثابت ہوئی ہے کہ جاندار کیسے نشوونما پاتے ہیں اور کام کرتے ہیں. نوبل انعام کے فاتحین کو $11 لاکھ کی رقم دی جائے گی. اس سال کا یہ نوبل انعام 1901 के बाद से फिजियोलॉजी या मेडिसिन के शोबे में दिया जाने वाला 115वां नोबेल इनाम है। 229 नोबेल इनाम फातिहीन में खवातीन सिर्फ 13 हैं। फिजिक्स के लिए नोबेल इनाम 2024 का ऐलान कल किया जाएगा। इसके बाद बुध को के रोज केमिस्ट्री का इनाम किया जाएगा। मगरबी बंगाल के बीरभूम जिले में कोयले की एक कान में हुए धमाके में कम अज कम 7 अफराद हलाक और 3 जख्मी हो गए। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब आज सुबह बदुलिया कोयले की कान में धमाका किए जाने के लिए तैयारियां की जा रही थी। जख्मियों का सियोरी जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। भारतीय फजाइया का 92वां यौम तासीस मनाने के लिए 7000 किलोमीटर तवील वायु वीर विजेता बड़ी कार रैली को कल लद्दाख में थॉइस के मुकाम पर झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। इस महीने की पहली तारीख को वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में वाकई कौमी जंगी यादगार से इस रैली को पुरजोश अंदाज में झंडी दिखाकर रवाना किया था। हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि इस रैली का मकसद भारतीय फजाइया की शानदार तारीख के बारे में लोगों में बेदारी को फरोग देना है। एक रिपोर्ट।
22 दिन तवील ये कार रैली 29 अक्टूबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में इख्तिताम पजीर होगी। भारतीय फजाइया के 52 जाबाज जिनमें खवातीन भी शामिल हैं इस बड़ी कार रैली में शामिल होंगे। इस रैली के मुख्तलिफ हिस्सों में भारतीय फजाइया के साबिक सरबराहों की शिरकत भी होगी। ये फिजाई जाबाज 16 मकामात पर रुकेंगे जिनमें लेह, करगिल, श्रीनगर, जम्मू, चंडीगढ़, देहरादून, आगरा, गोरखपुर, दरभंगा और गुवाहाटी शामिल हैं। फिजाइया के ये जाबाज मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों के तलबा से बातचीत भी करेंगे। आदर्श कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असदुल्ला।
ज़राअत के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा है कि हुकूमत मुल्क में काश्तकारी के कल्चर को बेहतर बनाने पर काम कर रही है। आज नई दिल्ली में किसानों और किसानों की यूनियन के साथ एक मुलाकात के बाद वजीर मौसूफ ने इस बात का इरादा किया कि हुकूमत ने किसानों की भलाई के लिए कृषि विकास योजना और फसल बीमा योजना जैसी स्कीमों के ताल्लुक से कई फैसले लिए हैं।
कृषि विकास योजना में अब हमने पूरा लचीलापन ला दिया है कि जिस राज्य के लिए जो योजना उपयुक्त हो उस पर वो काम करे। ऐसी कई चीजों पर काम हुए, फसल बीमा योजना सहित अनेकों चीजों की तरफ ध्यान आकर्षित किया है और हम पूरी गंभीरता से समस्याओं के समाधान के प्रयत्न करेंगे।
किसानों से बात करते हुए भारतीय किसान यूनियन दिल्ली के चेयरमैन सतीश लंबरदार ने कहा कि वजीर मौसूफ ने किसानों की तरफ से उठने वाली हर आवाज को तफसील से सुना और हल तलाश करने की उन्हें यकीन दहानी कराई। भारतीय जिमनास्ट दीपा कर्माकर ने पेशा वराना मुकाबला आरआई से सुबुकदोश होने का ऐलान किया है। जिमनास्टिक की दुनिया की सरकर्दा खिलाड़ी दीपा ने खेल को 25 साल वक्फ करने के बाद खेल की जिस्मानी जरूरतों की बिना पर अपने रिटायरमेंट का फैसला किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में दीपा ने कहा कि उन्होंने बेहद गौर व खौस के बाद पेशा वाराना जिम्नास्टिक से सुबुकदोशी का फैसला लिया है। साल 2014 में ग्लासगो में मुनाकिदा दौलत मुश्तरका खेलों में कर्माकर ने वॉल्ट जुमरे में कांसे का तमगा जीता था। इस तरह वो जिम्नास्टिक जुमरे में तमगा जीतने वाली पहली भारतीय खातून खिलाड़ी बन गई थी। दीपा को करियर में 2016 के रिओ ओलंपिक में संगमीर हुसूलिया भी उस वक्त हासिल हुई जब वो फाइनल वॉल्ट मुकाबले में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय खातून जिम्नास्ट बन गई। इस साल मुकाबले में वो चौथे नंबर पर रही। रिव्यू ओलंपिक के बाद दीपा कर्माकर ने साल 2018 के तुर्किया आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक आलमी कप में सोने का तमगा जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट बनने का एजाज हासिल किया। दीपा ने साल 2021 में ताशकंद में हुई एशियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में भी सोने का तमगा जीता था। दीपा कर्माकर को पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न इनाम से सरफराज किया गया। खास खबरें एक बार फिर। भारत ने मालदीव के लिए 400 मिलियन डॉलर की मदद और 3000 करोड़ रुपए पर मुश्तमिल बाहमी करेंसी की अदला बदली फराहम की है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुस्तकबिल के खतरात से निमटने के लिए मुल्क में नई और इख्तराई तकनीकी तरक्की पर जोर दिया है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में कल असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं और भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।